शांति, ओम शांति। कल सभी ने बाबा के महावाक्य सुने, बाबा की मुरली में विशेष यही बात कही बाबा ने, दुआएं दो और दुआएं लो। सभी ने सुनी ना मुरली, तो दुआएं देनी है, दुआएं मांगनी नहीं होती है। ऐसे हम किसको कहेंगे नहीं, मुझे दुआ करो, तो दुआएं मांगी नहीं जाती है, वो कर्मों से दुआएं अपने आप मिलती है। और जो अपने आप मिले वो दुआएं बहुत ही शक्तिशाली होती है, पर उसके लिए कर्म भी तो इतने ऊंचे चाहिए। और दूसरे भले कुछ भी करे पर मुझे दुआएं देनी है, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो बद्दुआएं दे और हम दुआएं दे, वो अपकार करे और हम उसका उपकार करें, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, साहस चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। तो आज की मुरली है पढ़ाई, पढ़ाई। हाँ, कल की मुरली थी बाप दादा की विशेष आशा, हर एक बच्चा दुआएं दे और दुआएं ले। बाबा की बहुत बड़ी आशा है बच्चों के प्रति, तभी तो संपन्न बनेंगे, तभी तो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। और आज की मुरली है पढ़ाई और याद। आज बाबा ने शिव जयंती पर कैसे समझाना है वो भी बताया, पढ़ाई और याद को आज बाबा ने सारी मुरली में महत्व दिया है। उसमें भी पढ़ाई, पढ़ाई तो बहुत सहज है, बाबा कहते इतनी सहज है ये पढ़ाई जो छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, और केवल पढ़ नहीं लेंगे दूसरों को सुनाएंगे भी। बहुत अच्छा सुनाते ना, बच्चों को सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को कितना प्यार से दूसरों को सुनाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको माँ बाप सिखाते हैं, तो कैसे यहाँ पर कहते हम भाषण करेंगे, तो खुशी होती है छोटे बच्चे अगर भाषण करे, बाबा का ज्ञान दे। तो बाबा कहते हैं हर एक को मुरलीधर बनना है, हर एक को ज्ञान सुनाना आना चाहिए, हर एक को। ऐसे कोई नहीं कह सकता है कि मेरा मुख नहीं खुलता है। और क्या सहज तरीका है मुख खोलने का, बाबा कहते चित्रों के सामने बैठ जाओ, चित्रों के सामने, उन चित्रों को देख करके उनको समझाओ, अपने मन में ही भले समझाओ, खुद को ही समझाओ, कोई न भी हो तो भी चित्रों पर सुनाते रहो। मुझे याद है बचपन में बाबा ने ये जब कहा था, तो मुझे याद है कि कैसे हम भाषण करना सीखते थे, हम दूसरों से भी सीखते थे, दादियों से सीखते थे, फिर हम अपनी प्रैक्टिस करते थे। टेप मशीन थी हमारे पास, वो टेप मशीन में भरते थे, हाँ मैं कैसे बोलती हूँ, और फिर योग कमेंट्री कैसे कराती हूँ, तो वो बोलते थे, फिर सुनते थे, फिर क्या मिस्टेक हमने की उसमें वो करेक्शन करते थे। तो बाबा के आगे भी हमने भाषण किया था, मुझे याद है ब्रह्मा बाबा साकार में बॉम्बे में आते थे बाबा, तो हमने इंग्लिश में भाषण किया, करीब 13 साल की होंगी मैं उस समय, तो बाबा के आगे इंग्लिश में भाषण किया। बाबा ने कहा बच्ची तुम इंग्लिश में बहुत होशियार हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े बॉम्बे में, तो बाबा ने कहा तुम बहुत होशियार हो। और बाबा कहेंगे और पढ़ो तो तुमको बाबा विदेश भेजेगा, ये बचपन में बाबा ने वरदान दे दिया था। तो देखो बाबा ने वो वरदान दिया था जिससे बाबा के भी डबल विदेशियों की भी इतनी सेवा कर पाते हैं। तो आज भी बाबा ने कहा छोटे बच्चे भी अगर सीख ले तो वो भी अधिकार ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? अभी दिसंबर में 15 तारीख के बाद, आज से इसके बाद बच्चों की रिट्रीट भी होने वाली है ज्ञान सरोवर, डबल विदेशी बच्चे। अब वो भी इतने होशियार हो गए तो देखो बाबा के आत्मा यहाँ वहां भी तो जन्म लिया होगा ना, और जन्म बचपन से ज्ञान में आ जाते हैं। कल भी हमको कनाडा का एक परिवार मिला, तो वो छोटी बच्ची इतनी स्वीट है और इतना भाषण करने लगी जो बात मत पूछो। मैंने कहा होगी 4 साल की, लेकिन कहती ये आई है ना जन्म लिया है तो हम ज्ञान में चल पड़े। उनका पूरा परिवार कनाडा में रहते हैं। तो देखो ये भी बाबा की कमाल है, बाबा के बच्चों की कमाल है। तो सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज 16/12/2024 है। मीठे बच्चे, ये पावन बनने की पढ़ाई सब पढ़ाइयों से सहज है। इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पता नहीं जो जो भी स्टेटस लेते हैं, सीए करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, बहुत कठिन होती है पढ़ाई, ऐसे सहज नहीं है। लेकिन ये पढ़ाई तो कितनी सहज है, इसे बच्चे, जवान, बूढ़े सब पढ़ सकते हैं। सिर्फ 84 जन्मों को जानना है, पढ़ाई तो मुश्किल नहीं है। प्रश्न है, हरेक छोटे व बड़े को कौन सी प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, हरेक को प्रैक्टिस करनी चाहिए। उत्तर है, हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। मुरली चलाना माना ज्ञान सुनाना, बाबा उसको कहते थे मुरली चलाने की प्रैक्टिस। हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तुम मुरली धर के बच्चे हो। और वंडरफुल बात तो ये, हम ब्रह्मा मुख से पैदा हुए, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से हमें पैदा किया है, तो ब्रह्मा के मुख का तो महत्व है, लेकिन हमारा भी तो मुख का महत्व होगा ना। जो हम भी बाबा की मुरली दूसरों को, ज्ञान दूसरों को सुना सके। तो हर एक को मुरली चलाने की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, क्योंकि तो मुरली धर के बच्चे हो। अगर मुरली नहीं चलाते हो, दूसरों को ज्ञान नहीं सुनाते हो, तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। सीधी बात, अगर ऊंच पद पाना है भविष्य में तो यह ज्ञान दूसरों को सुनाना जरूर है। हम कई बार कहते हम मैं ज्ञान नहीं सुना पाती हूँ। अरे बाकी दुनिया की सारी बातें कर लोगी, इसकी बात उसकी बात उसकी बात, पर ज्ञान नहीं सुना पाते हैं। तो वो तो विचित्र हो गया ना। तो बाबा कहते हैं, किसी को सुनाते रहो तो मुख खुल जाएगा। तुम हरेक को बाप समान टीचर जरूर बनना है। जो पढ़ते हो वो पढ़ाना है। छोटे बच्चों को भी यह पढ़ाई पढ़ने का हक है। वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। भले छोटे बच्चों को इतनी समझ ना भी हो, लेकिन ज्ञान को रट तो लेते हैं ना, भाषण रट लेते हैं और उसी अनुसार सुनाते भी हैं। तो वो भी बेहद के बाप का वर्षा लेने के अधिकारी है। ओम शांति। अभी आती है शिव की जयंती, आ रही है फरवरी महीने में शिव जयंती है। अभी आती है शिव बाबा की जयंती, उस पर कैसे समझाना चाहिए। बाप ने तुमको समझाया है, वैसे तुमको फिर औरों को समझाना है। ऐसे तो नहीं क्या, बाबा जैसे तुमको पढ़ाते हैं वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना है। बाबा तो नहीं जाएंगे सारी दुनिया में पढ़ाने के लिए, तुम बच्चे बाबा से पढ़ते हो फिर तुमको जाके पढ़ाना है। तो बाबा जैसे तुमको पढ़ाता है वैसे बाबा को ही सबको पढ़ाना, ऐसी बात तो नहीं है। शिव बाबा ने तुमको पढ़ाया है, तुम जानते हो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। ये मुरली शिव बाबा की ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाई गई है, तो इस शरीर द्वारा पढ़ाया है। बरोबर हम शिव बाबा की जयंती मनाते हैं, हम नाम भी शिव का लेते हैं, वो तो है ही निराकार, उनको शिव कहा जाता है। अब वो लोग कहते हैं शिव तो जन्म मरण रहित है, फिर उनकी जयंती कैसे होगी, इसलिए वो जयंती शब्द नहीं बोलते हैं, शिवरात्रि बोलते हैं। अवतरण होता है शिव का, परंतु आएगा तो शरीर में ना, तो उसको जयंती क्यों नहीं कहेंगे। परंतु वो कहते वो तो जन्म मरण से न्यारा है, तो उनका जन्म थोड़ी होता है, उनकी फिर जयंती कैसे होगी, ऐसे पूछ कहते हैं। अब ये तो तुम जानते हो कैसे नंबर वार मनाते आए हैं, ये तुम जानते हो कैसे नंबर वार मनाते आते हैं, हर साल मनाते हैं, कितने त्योहार मनाते हैं और मनाते ही रहेंगे। तो उनको समझाना पड़े कि बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। क्यों हम इसको शिव जयंती कहते हैं, क्योंकि बाप आकर इस तन का आधार लेते हैं। मुख तो जरूर चाहिए, इसीलिए गौ मुख की महिमा है। ये राज जरा पेचीला है, गौ मुख की महिमा कैसे है, ये ज्ञान कैसा है, ये बाबा कहते पेचीला है। पेचीला माना थोड़ा अच्छी तरह से समझने का, ऐसे नहीं आप शिव बाबा आते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा ज्ञान देते हैं, वो कहेंगे ऐसे कैसे, कई बातें पूछेंगे तो समझाना पड़ता है। ये राज जरा पेचीला है, शिव बाबा के ऑक्यूपेशन को समझना है। हमारा बेहद का बाप आया हुआ है, उनसे ही हमको बेहद का वर्षा मिलना है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं, सतयुग स्वर्ग जो भारत था, ये शिव बाबा ने वर्षा दिया, ये भारत का ही हक है। बरोबर भारत को बेहद का वर्षा था, और किसको होता नहीं, भारत को ही सचखंड कहा जाता है और बाप को भी ट्रुथ कहा जाता है। तो ये बातें समझानी पड़ती है, फिर कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है और कोई तो झट समझ जाते हैं ना, कई प्रकार के लोग हैं, कोई तो एकदम एकदम फटाफट समझ जाते हैं, बिल्कुल कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, पर तो कई फिर होंगे ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे होगा। हाँ तो बाबा कहते हैं कोई को जल्दी समझ में नहीं आता है और कोई तो झट समझ जाते हैं। ये योग और एजुकेशन, पढ़ाई और याद, ये योग और एजुकेशन माना पढ़ाई, दोनों खिसकने वाली चीजें हैं। उसमें भी योग जास्ती खिसकता है, याद ठहरती नहीं है ना, माया बहुत उसमें विघ्न डालती है, उसमें भी योग जास्ती खिसकता है। नॉलेज तो बुद्धि में रहती ही है, बाकी याद ही घड़ी घड़ी भूलते हैं। नॉलेज तो तुम्हारी बुद्धि में है ही कि हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, ज्ञान को समझना मुश्किल नहीं है, हम कैसे 84 जन्म लेते हैं। जिनको ये नॉलेज है वही बुद्धि से समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं, जिनको ये ज्ञान है वो क्या समझ सकते हैं कि जो पहले पहले नंबर में आते हैं वही 84 जन्म लेंगे, बाद वाले जरूर कम लेंगे। पहले ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण को ही कहेंगे, नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। कौन सी है नर से नारायण बनने की कथा, सत्य नारायण की कथा। तो नर से नारायण बनने की कथा भी नामी ग्रामी है। हाँ उसमें तो दिखाते हैं बस कंगाल बन गए, फिर सिरताज बन गए, फिर धनवान बने, हाँ फिर भूल गए सत्यनारायण की कथा करना तो फिर कंगाल हो गए। बस कंगाल और सिरताज, बस इसकी कहानी है सत्यनारायण की कहानी, तो वो भी नर से नारायण, नारायण से नर बनने की कथा है। पूर्णमासी पर बहुत जगह सत्य नारायण की कथा चलती है। अभी तुम जानते हो हम सचमुच बाबा द्वारा नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ते हैं, सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा भगवान से सुनते हैं। ये है पावन बनने की पढ़ाई, ये पढ़ाई कौन सी है, पावन बनने की पढ़ाई, और है भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज। और कोई पढ़ाई पावन बनने की तो होती नहीं है, बहुत मुश्किल भी होती है, और ये सहज भी है और इसे पावन भी बनते हैं। और भी सब पढ़ाइयों से बिल्कुल सहज भी है ये पढ़ाई, 84 जन्मों के चक्र को जानना है और फिर ये पढ़ाई सबके लिए एक ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो सबको एक जैसी पढ़ाई मिलती है। बच्चे बूढ़े जवान जो भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है। हमने तो एक कहीं गई, मैं एक छोटी बच्ची को देखा, मुरली ले, जबकि वो कभी स्कूल में नहीं गई, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं है। स्कूल में जाए तो पढ़े ना, उसको आता कुछ नहीं है, तो बस बैठ जाती थी क्लास में आकर के ऐसे ही सेंटर पर, और बैठ करके उसको कहती थी मुरली दो, और मुरली ऐसे पढ़ती थी जैसे पता नहीं सब पढ़ सकती है, और जब अक्षर ज्ञान भी नहीं था, अभी तो 3-4 साल की छोटी बच्ची थी, तो सोचो पूर्व जन्म में वो होगी ना, बीके होगी और टीचर होगी, तभी तो वो इतनी छोटी उम्र में भी बस मुरली चाहिए मुरली चाहिए। तो कितना बड़ी प्यारी बच्ची थी। तो बाबा कहते हैं बूढ़े बच्चे जवान को भी हो, जवान भी हो सबके लिए एक ही पढ़ाई है। छोटे बच्चों को भी हक है, अगर माँ बाप इन्हों को थोड़ा थोड़ा सिखाते रहे तो टाइम तो बहुत पड़ा है, छोटे बच्चे सीख जाएंगे। बच्चों को भी यह सिखाया जाता है कि शिव बाबा को याद करो। आत्मा और शरीर दोनों का बाप अलग अलग है। आत्मा बच्चा भी निराकारी है तो बाप भी निराकारी है। ये भी तुम बच्चों की बुद्धि में है, वो निराकार शिव बाबा हमारा बाप है। जितना छोटा कितना छोटा है, अब इतना बड़ा बेहद का बाप पर कितना छोटा है, साइज में छोटी बिंदी है, कितना छोटा है ये बाबा कहते हैं। ये अच्छी रीति याद रखना है, भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा भी बिंदी मिसल छोटी है, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी। वो जो सितारे हैं जो आकाश में देखते हैं वो तो है तो बहुत बड़े, लेकिन धरती पर हम धरती से देखते तो वो छोटे दिखाई देते हैं, और जो स्पेस में जाते हैं उनको तो फिर बड़े बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि है तो बड़े ना, पर अब दूर कितने हैं इसलिए छोटे दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आत्मा के लिए क्या कहेंगे, ऐसे नहीं ऊपर जाएंगे तो बड़ी दिखाई पड़ेगी आत्मा, या नीचे छोटी हो जाएगी, ऐसे नहीं। वो तो है ही बिंदी, चाहे ऊपर में जाएंगे तो तुमको जैसे देखने में भी नहीं आएगी आत्मा, इतनी बिंदी छोटी है, बिंदी है ना, बिंदी क्या देखने में आएगी। वैसे भी कई बार फुल स्टॉप लगाते हैं वो दिखाई भी नहीं देता है ना, ऐसे बिंदी कई बार दिखाई भी नहीं देती है, बिंदी क्या देखने में आएगी। इन बातों पर बच्चों को अच्छी रीति विचार भी करना है। हम आत्मा ऊपर से आई है शरीर से पाठ बजाने, आत्मा घटती बढ़ती नहीं है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं, शरीर छोटा होता है फिर बड़ा होता है, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती है। ऑर्गन्स पहले छोटे पीछे बड़े होते हैं। अभी जैसे तुमने समझा है फिर क्या करना है तुमको, वैसे फिर औरों को समझाना है। ये तो जरूर है, नंबर वार जो जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ाते हैं। सबको टीचर भी जरूर बनना है सिखाने के लिए। बाप में तो नॉलेज है, वो इतनी छोटी सी परमात्मा है, परमात्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, लेकिन परम है, हर बात में परम है, ज्ञान में भी परम है, इसीलिए सागर है। इतनी छोटी सी परमात्मा है, सदैव परम धाम में रहते हैं, यहाँ एक ही बार संगम पर आते हैं। बाप को पुकारते भी तब हैं जब बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं ऐसे नहीं ज्यादा द्वापर युग से पुकारना शुरू किया, नहीं भक्ति जरूर की, उनके मंदिर जरूर बनाए शिव के, लेकिन पुकारा उस समय नहीं होगा, ये तो कलयुग में जब आते बहुत दुखी होते तब पुकारते हैं कि आओ आकर सुख दो। बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं। यहाँ एक ही बार संगम पर बाप आते हैं, बाप को पुकारते भी तब है जब बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं आ करके हमको सुखी बनाओ। बच्चे अब जानते हैं हम पुकारते रहते हैं, बाबा आकर हमको पति दुनिया से नई सतयुगी पावन दुनिया में ले चलो, अथवा वहां जाने का रास्ता बताओ। ये भी जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। तो भगवान को कहते तो है, आओ आके पावन बनाओ, आके सुख दो, शांति दो, रास्ता बताओ। लेकिन बाबा कहते जब वो आए तब तो बतावे। तो जब खुद आवे तब तो रास्ता बतावे। वो आएंगे भी तब, कब आएंगे ऐसे नहीं बीच में आ जाएंगे, वो आएंगे भी तब जब दुनिया को बदलना होगा। जब दुनिया को बदलना होगा तभी आएंगे। ये बड़ी सिंपल बातें हैं जो नोट करनी है। बाबा ने आज ये समझाया है, हम भी ऐसे समझाते हैं मुरली से सीख करके, फिर बाबा कहते हैं औरों को समझाओ, हम भी ऐसे समझाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस करते करते मुख खुल जाएगा, सुनाने के लिए मुख खुल जाएगा। प्रैक्टिस करो बाबा की मुरली से। तो मुरलीधर के बच्चे हो, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है, ज्ञान दूसरों को सुनाना है। हाँ, है कोई ऐसा जो कभी ज्ञान नहीं सुनाता है, बस सुनता ही रहता है, मुरली सुनता है कभी सुना नहीं पाता है कोई? हाँ, कोई नहीं होना चाहिए, होना तो कोई नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं जब औरों का, तुम्हें मुरलीधर जरूर बनना है, जब औरों का कल्याण करेंगे तब तो नई दुनिया में ऊंच पद पाएंगे। ये पढ़ाई तो है यहाँ के लिए, जो दुनिया में जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो इस कलयुग की दुनिया के लिए, अभी के लिए और एक जन्म के लिए ही है। वो पढ़ाई तो यहाँ के लिए है और ये पढ़ाई भविष्य नई दुनिया के लिए है। वहां तो सदैव सुख ही सुख है उस नई दुनिया में। वहां पांच विकार तंग करने वाले होते ही नहीं है। यहाँ रावण राज्य अर्थात पराये राज्य में हम हैं। हाँ, ये हमारा राज्य नहीं है, ये पराये रावण राज्य में हम हैं। तुम ही पहले अपने राज्य में थे, तुम कहेंगे नई दुनिया, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। हाँ, अपने राज्य में थे, भारत नया था, नई दुनिया थी, फिर भारत को ही पुरानी दुनिया कहा जाता है। गायन भी है नई दुनिया में भारत, ऐसे नहीं कहेंगे। हाँ, क्या नहीं कहेंगे? नई दुनिया में भारत कहेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि नई दुनिया में इस्लामी बोधी, क्योंकि और धर्म वाले जब आते तब तो आधी दुनिया पुरानी हो गई ना, उसके बाद ही आते हैं द्वापुर से। तो ऐसे नहीं कहेंगे नई दुनिया में इस्लामी बोधी, नहीं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि बाप आकर हम बच्चों को जगाते हैं, ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है, आना ही उनको तब है जब जगाने का समय होता है, और एकदम घोर अंधेरे में है तब जगाना होता है। तो ड्रामा में पार्ट ही उनका ऐसा है, भारत को ही आकर के स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही पहला देश है, हाँ, भारत ही पहला देश है जो बिल्कुल स्वर्ग बन जाता है। भारत पहले देश को ही स्वर्ग कहा जाता है। भारत की आयु भी लिमिटेड है, हाँ, स्वर्ग की आयु तो लिमिटेड है ना, भारत की आयु भी लिमिटेड है। लाखों वर्ष कहना ये तो अनलिमिटेड हो जाता है कि लाखों वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, फिर तो पता नहीं, हाँ, गिनती भी हो न सके और याद भी हो न सके। तो लाखों वर्ष की कोई बात स्मृति में भी आ न सके। नया भारत था, अब पुराना भारत ही कहेंगे, भारत ही नई दुनिया होगी। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं, चढ़ता है नशा, अभी हम नई दुनिया के मालिक बन रहे हैं। तो बाबा ने राय बताई है, क्या राय बताई है, कि मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा नई प्योर बन जाएगी, फिर शरीर भी तुमको नया मिलेगा, एकदम प्योर पवित्र शरीर कंचन काया मिलेगी। आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान बनते हैं। तुमको राज्य मिलता ही है किसके लिए? सुख के लिए। क्यों हमको कहते हैं हाँ सत्युग में जाना? क्योंकि वहां सुख है। तो तुमको राज्य मिलता ही है सुख के लिए। ये भी ड्रामा अनादि बना हुआ है, ये नई दुनिया में सुख और शांति है, वहां कोई तूफान आदि नहीं होते, कोई उपद्रव नहीं होता, कोई आपदाएं नहीं आती है, कुछ नहीं ऐसा प्रकृति तंग करती है। तो बाबा कहते हैं वहां कोई तूफान आदि नहीं होते, बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं, बेहद की शांति में सब शांत हो जाते हैं। यहाँ है अशांति तो सब अशांत है, सतयुग में सब शांत होते हैं, सब शांत होते हैं। इतना ज्यादा बोलते भी तो नहीं होंगे ना देवताएं, बहुत कम जो काम की बात है बस वही, बाकी तो और फालतू बातें थोड़ी करते होंगे देवताएं। सतयुग में सब शांत होते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। ये अनादि बना बनाया खेल है, ये है बेहद की बातें। अनादि बना बनाया खेल, इसमें सब बेहद का है, ये है बेहद की बातें। वो हद की बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि पढ़ते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में बेहद की नॉलेज है। एक ही बार बाप आकर बेहद ड्रामा का राज समझाते हैं। आगे तो ये नाम भी नहीं सुना था, क्या नहीं सुना था कि बेहद का ड्रामा कैसे चलता है, कभी मुख से कभी किसने सुनाया भी नहीं होगा ये बेहद का ड्रामा है और ऐसे बेहद का नाटक चलता है। तो बाबा कहते कभी सुनाया भी नहीं होगा, ये किसी को पता भी नहीं है। अभी समझते हो सतयुग त्रेता जरूर पास्ट हो गया, इसमें इनका राज्य था लक्ष्मी नारायण का, त्रेता में राम राज्य था, पीछे फिर और धर्म आए हैं। इस्लामी बोधि, हाँ उनके लिए क्या कहेंगे, इस्लामी बोधि क्रिश्चियन आदि आदि सब धर्मों का अब तुमको पूरा मालूम है, ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष तो कलयुग है, सब हिसाब है ना, जितने भी धर्म आए हैं वो सब 2500 वर्ष के अंदर ही आए, आधा कल। चाहे इस्लाम, चाहे अब्राहम आया, उसको भी कहते 2500 साल पहले आया था, फिर बुद्ध के लिए भी वही 2500 साल कहते हैं, और फिर क्रिश्चियन के लिए, क्राइस्ट के लिए 2000 साल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सब 2500 साल के अंदर ही है, तो ये सब 2500 वर्ष के अंदर आए हैं। उसमें 1250 वर्ष कलयुग है, सब हिसाब है ना, ऐसे तो नहीं कि सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, भाई जब इस्लाम आया, अब्राहम आया तभी से सृष्टि है, उसके पहले भी तो सृष्टि थी ना, तो ऐसे तो नहीं सृष्टि की आयु ही 2500 वर्ष है, नहीं। अच्छा फिर और कौन था, विचार किया जाता इस्लाम के पहले कौन था, अब्राहम के आने से पहले कौन था, विचार किया जाता है इन्हों के आगे बरोबर देवी देवता धर्म था, वो भी थे तो मनुष्य ही ना, देवताएं थे इस्लाम धर्म अब्राहम से पहले, तो वो भी तो मनुष्य ही थे ना, परंतु दैवी गुणों वाले थे, सूर्यवंशी चंद्रवंशी 2500 वर्ष में, फिर बाकी आधा में सब और आते हैं, और धर्म वाले आधा में आते हैं, इससे जास्ती का तो कोई हिसाब किताब निकल न सके, लाखों वर्ष का तो क्या हिसाब किताब निकालेंगे। हाँ तो ये 5000 साल में ही पूरा हिसाब किताब है, फुल पौना आधा फिर चौथा स्वास्थ्य का, तो फुल पूरा 5000 साल, फिर पौना, हाँ तीन, तो ये पौना हो जाता है, 5000 को डिवाइड करो तो तीन हिस्सा, फिर आधा, फिर चौथा, चार हिस्सा है, तो कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, पहले आधा करेंगे फिर उसको, जैसे स्वस्तिका भी बनाते तो भी ऐसे ही बनाते ना, तो कायदे से टुकड़ा टुकड़ा करेंगे ना, आधा में तो ये है सारे और धर्म, और फिर बाकी जो पहला आधा है उसमें देवता ही हैं। तो कहते भी हैं सतयुग में सूर्यवंशी राज्य, त्रेता में चंद्रवंशी राज्य, ये तुम सिद्ध कर बतलाते भी हो, तो जरूर सबसे बड़ी आयु तो उनकी होगी, जो शुरू में आए हैं कल्प के उनकी आयु सबसे बड़ी होगी, जो पहले पहले सतयुग में आते हैं उनकी आयु सबसे बड़ी होगी, उनके जन्म भी ज्यादा होंगे। तो कल्प ही 5000 वर्ष का है, वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, क्योंकि इनका आपस में मेल है ना। अगर 84 लाख योनियां कहें और 5000 वर्ष कहें, तो 5000 वर्ष में थोड़ी 84 लाख योनियां हो सकती है, इसीलिए कल्प की आयु बढ़ा दी है लाखों साल, उसमें 84 लाख योनियां। तो वो लोग 84 लाख योनियां कह देते हैं, तो कल्प की आयु भी लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई माने भी नहीं। सब में जाएंगे, कीट पक्षी जीव जंतु, अब मनुष्य आत्मा इतनी ऊंची आत्मा, वो सब इनमें जाएगी, सोचने की भी बात है। संस्कार तो मनुष्य आत्मा के ही है ना, तो कीट पक्षी में क्या जाएगी। तो बाबा कहते हैं, तो कोई माने भी नहीं, इतनी बड़ी दुनिया भी हो न सके। तो बाप बैठ समझाते हैं, वो सब है अज्ञान। 84 लाख योनियों में मनुष्य आत्मा जाती है, आज लाखों साल, बाबा कहते ये सब है अज्ञान। और ये है ज्ञान जो भगवान हमें देते हैं, और ये है ज्ञान। ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौमुख। अब मुख से ज्ञान देंगे तो गौ मुख का गायन है, क्योंकि मुख से ज्ञान मिलता है। इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं, हर शिव के मंदिर में गौ मुख जरूर होगा, वो बाहर में होता है, क्योंकि जो अभिषेक करते हैं पानी से या जो भी, वो जिस वो जाता है वो रास्ते से, जिस रास्ते से, और फिर मंदिर के बाहर वो जैसे नाला होता है, उस मंदिर उस नाले में बहता है, पर गौ मुख से निकलता है। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान कहाँ से आया ये भी किसको पता नहीं है। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है, वही ज्ञान देते हैं मुख से, कहते हैं गौ मुख। इस गौ माता से, कौन है गौ माता, ब्रह्मा माँ, इस गौ माता से तुम सबको एडॉप्ट करते हैं। ये थोड़ी सी बातें समझाने में तो बहुत सहज है, ये बातें समझानी है तो बहुत सहज है। एक रोज समझाकर फिर छोड़ देंगे तो बुद्धि फिर और बातों में लग जाएगी। अब एक ही दिन का कोर्स किया और फिर चला गया, फिर और बातों में बुद्धि जाएगी, वो एक दिन का कोर्स भी भूल जाएगा, और बातों में लगेगी तो एक दिन का वो कोर्स भी भूल जाएगा। स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या पढ़ा जाता है क्या, या रेगुलर पढ़ना होता है, रोज पढ़ना होता है ना। स्कूल में एक दिन गए स्कूल में, बैठे कक्षा में और फिर अगले दिन आए नहीं, तो क्या पढ़ाई होगी। पढ़ाई तो रोज पढ़नी होती है। तो बाबा कहते हैं, स्कूल में एक दिन पढ़ा जाता है या रेगुलर पढ़ना होता है। नॉलेज एक दिन में तो नहीं समझी जा सकती है, बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं तो जरूर बेहद की पढ़ाई होगी। बाप भी बेहद का तो पढ़ाई भी बेहद की होगी, बेहद का राज्य भी होगा। सब बेहद है तो राज्य भी बेहद का बाबा देते हैं। भारत में बेहद का राज्य था ना, ये लक्ष्मी नारायण बेहद का राज्य करते थे। किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं कि हम भी ऐसे इनके राज्य में जा सकते हैं। हाँ बाबा कहते किसको स्वप्न में भी नहीं होगा, किसको ये बातें स्वप्न में भी नहीं है जो पूछे कि इन्होंने राज्य कैसे लिया। इन्होंने प्यूरिटी जास्ती थी, योगी है ना, इसीलिए आयु भी बड़ी होती है। देवी देवताओं की आयु भी बड़ी होती है, उनको योगी राज भी कहते, श्री कृष्ण को तो खास योगी राज कहते थे। तो बाबा कहते तो आयु कितनी बड़ी है, योग तो अभी लगाया जो फिर इतनी बड़ी आयु उनकी हुई भविष्य में। योगी है ना इसलिए आयु भी बड़ी होती है। हम ही योगी थे फिर 84 जन्म ले, भोगी भी जरूर बनना है। योगी से भोगी, फिर भोगी से योगी, और जब भोगी बनते हैं तो आयु कमती होती जाती है, फिर योगी बनते हैं भविष्य में 150 साल आयु, तो फिर लंबी आयु हो जाती क्योंकि योगी इससे बने हम। फिर 84 जन्म ले भोगी भी जरूर बनना है। मनुष्य नहीं जानते हैं कि ये भी जरूर पुनर्जन्म में आए होंगे, लक्ष्मी नारायण की आत्मा भी तो पुनर्जन्म में आई होगी। इनों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है, भगवान को कोई भगवती नहीं होती है, भगवान की स्त्री नहीं होती है, लेकिन लक्ष्मी नारायण को क्यों कहते हैं भगवान भगवती, क्योंकि भगवान ने उनको बनाया। और दूसरा भाग्यवान है, तो भाग्यवान है तो भगवान भगवती है और भगवान ने बनाया उनको। तो बाबा कहते हैं इन्हों को भगवान भगवती नहीं कहा जाता है, इनसे पहले तो कोई है नहीं जिसने 84 जन्म लिया हो। पहले पहले जो सत्युग में राज्य करते हैं वही 84 जन्म लेते हैं, इनके पहले कोई नहीं था, नई दुनिया शुरू ही इनसे होती है और यही सबसे अधिक 84 जन्म लेते हैं। वही 84 जन्म लेते हैं, फिर नंबर वार नीचे आते हैं। हम आत्मा सो देवता बनेंगे, फिर हम सो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। डिग्री कम होती जाती होती है, गाया भी जाता है पूज्य से पुजारी, सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनते हैं। ऐसे पुनर्जन्म लेते लेते नीचे चले जाएंगे। ये कितना सहज है समझना, परंतु माया ऐसी है जो सब बातें भुला देती है। माया बहुत खराब है ना, सब बातें भुला देती है। ये सब पॉइंट्स इकट्ठी कर किताब आदि बनाए, लेकिन वो तो कुछ रहेगा रहेगी नहीं। अब चलो बनाते रहते किताब, पर ये किताबें थोड़ी सत्युग में चलेगी, ये तो रहेंगी नहीं, ये सब टेम्पररी है। बाप ने कोई गीता सुनाई, गीता नहीं सुनाई है, किताब उठा करके गीता नहीं सुनाई है शिव बाबा ने। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था, ब्रह्मा बाबा ने भी कब ऐसे किताब लेकर के तो थोड़ी सुनाया, रोज सवेरे बाबा की मुरली चलती थी तो शिव बाबा की प्रवेशता होती थी और ब्रह्मा बाबा भी तो सुनाते थे, तो बाबा कहते कोई किताब लेकर थोड़ी सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं बाप ने कोई गीता नहीं सुनाई थी, हाँ कोई किताब लेकर के गीता नहीं सुनाई थी। बाप तो जैसे अब समझा रहे हैं ऐसे समझाया था। ये वेद शास्त्र आदि सब बाद में बनते हैं, ये सब होल लॉट जो है, होल लॉट सारा, इतना सारे कितने सारे शास्त्र वेद, बाबा ने एक बार कहा था कि ये सारे इकट्ठे करो तो ये पूरा हॉल से भी ज्यादा हो जाएंगे, कितने शास्त्र वेद। तो बाबा कहते हैं ये सब होल लॉट जो है विनाश होगा तो ये सब जल जाएंगे, सब कुछ जल जाएगा, ये सब विनाश होगा, सब जल जाएगा। सत्युग त्रेता में तो कोई पुस्तक होती ही नहीं है, फिर भक्ति मार्ग में बनाते हैं, कितनी चीजें बनती है भक्ति मार्ग में, कितनी चीजें बनती है। एक गीता ही लीजिए, आजकल तो सभी भाषाओं में, विदेश की भाषाओं में भी गीता की टिप्पणी है। वो बताया कि कैसे कितने विदेशी भाषाओं में गीता की टिप्पणी, भारत में तो है ही है कई टिप्पणियां इनके ऊपर, कईयों ने लिखा है गीता पर, लेकिन विदेशों में भी है। तो बाबा कहते हैं कितनी चीजें बनती है, रावण को भी बनाते हैं परंतु बेसमझी से, कैसे बनाते रावण को कुछ भी बता नहीं सकते। बाप समझाते हैं हर वर्ष बनाते हैं रावण को और फिर जलाते हैं, जरूर ये बहुत बड़ा दुश्मन होगा। चलो दुश्मन होता एक बार उसकी एफिजी जलाई खत्म, बस पूरा हुआ, लेकिन इसको तो हर वर्ष जलाते हैं तो कितना बड़ा दुश्मन होगा रावण, जरूर ये बड़ा दुश्मन है, परंतु दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते। भाई सीता का हरण किया इसीलिए दुश्मन, वो तो चलो वो राम की सीता थी ना, तो अभी हम क्यों जलाते हैं। तो परंतु बाबा कहते हैं ये दुश्मन कैसे है ये कोई नहीं जानते, वो समझते हैं सीता चुरा के ले गया इसीलिए शायद दुश्मन है, राम की सीता को चुरा ले जावे तो बड़ा डाकू हुआ ना। आज भी किसी की स्त्री चोरी हो जाए तो कैसा वो व्यक्ति होगा, उसको तो कितनी बड़ी सजा मिलेगी किसकी स्त्री चोरी करके ले जाए, तो बड़ा डाकू हुआ ना। कभी चोरी की? अब देखो बाबा राज बताते हैं। अच्छा कोई कहेंगे भाई राम की सीता चोरी हो गई, रावण ने चुराया, तो फिर पूछो कि कौन सा राम था, क्योंकि 12 राम है। अब त्रेता के आदि वाला राम या 12वां वाला राम, कौन से राम की सीता हो सकता है चुराई गई हो? तो देखो बाबा कहते हैं, अच्छा कभी चोरी की रावण ने, त्रेता में कहीं व त्रेता के अंत में कहीं, इन बातों पर भी विचार किया जाता है। कभी चोरी होनी चाहिए, त्रेता के आदि में जो पहला श्री राम होगा उसकी तो नहीं सीता चुराई गई होगी ना, उस समय कौन चोर भी नहीं होगा, लेकिन त्रेता का जो अंतिम राम होगा हो सकता है उसकी सीता चुराई गई हो सकता है। बाबा कहते हैं तो कभी होनी चाहिए चोरी, कौन से राम की सीता चोरी हुई? राम सीता की भी राजधानी चलती है ना, तो राम सीता की भी राजधानी चली है, राजधानी चली है क्या? एक ही राम सीता चले आए हैं क्या, जो पूरा त्रेता युग तक राम सीता के राज्य का राज्य था, तो एक ही राम सीता चले आए हैं क्या? ये तो शास्त्रों में जैसे कहानी लिखी हुई है, रामायण जिस रूप से है वो तो एक कहानी लिखी हुई है, तो विचार किया जाता है कौन सी सीता। 12 नंबर होते हैं ना त्रेता युग में, 12 गदियां चलती है श्री राम की, तो 12 नंबर होते हैं ना राम सीता, तो कौन सी सीता को चुराया? जरूर पिछाड़ी का होगा। ये जो कहते हैं राम की सीता चुराई गई, अब राम के राज्य में सारा समय एक का ही राज्य तो नहीं होगा ना, जरूर डायनेस्टी होगी पूरी, एक राजा बैठा फिर उसके बाद दूसरा, उसका बेटा बैठा, उसका बेटा, उसका बेटा, तो ये तो पूरी राजधानी होगी ना, डायनेस्टी होगी, राजा ही होगी, तो कौन से नंबर की सीता चुराई? ये सब बहुत समझने की बातें हैं। और धर्मों में भी आप देखेंगे, क्रिश्चियनिटी में भी देखेंगे, तो भगवान ने एडम और ईव को धरती पर भेजा और कहा कि ये जो फल है फॉरबिडन फ्रूट, इस फल को नहीं खाना। पर जब शैतान आया तो शैतान ने, वो सैटन ने ईव को भड़काया, तुम खाओ, हाँ ये तो भगवान ने ऐसे ही आपको बोल दिया, ये बहुत मीठा फल है खाओ। अब एडम ने मना किया, नहीं खाना है, भगवान ने मना किया है, पर ईव को वो शैतान ने उकसाया और फिर आखिर एडम मान गया। हाँ जैसे दिखा रहे ना, सीता ने राम को कहा कि जाओ ये लेकर आओ सुनहरा हिरण, तो इसलिए ईव ने एडम को उकसाया और आखिर एडम को मानना पड़ा ईव ने जो कहा कि वो फल खाओ, तो फल लेकर आया और वो फल दोनों ने खाया और फिर देखो विकारी बने, तो ये ईव ने किया। तो ये शास्त्रों में जो भी ना, नारी को तो तिरस्कार ही किया है सचमुच अगर देखा जाए, तो फिर बाबा आकर के कैसे नारियों को इतना ऊंचा उठाते हैं। तो बाबा समझाते हैं, तो कौन से नंबर की सीता चुराई, ये सब बहुत समझने की बातें हैं। तुम बच्चे बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। हाँ बड़ी शीतलता से समझाना है, नहीं तो कोई भड़क भी जाएगा, तुम ये क्या कहते हो। तो बड़ी शीतलता से किसी को भी ये सब राज समझा सकते हो। बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना धक्का खाते खाते दुखी हो जाते हैं, जब अति दुखी होते हैं तब रड़िया मारते हैं, बाबा इस दुख से छुड़ाओ। रावण तो कोई चीज नहीं है ना, कोई व्यक्ति तो नहीं है ना रावण, अगर है तो अपने राजा को फिर हर वर्ष मारते क्यों, हर वर्ष उसको मारते अगर वो सचमुच है और वो राजा है। रावण की जरूर स्त्री भी होगी, अच्छा मंदोदरी दिखाते हैं, अब मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए ऐसे तो कभी देखा ही नहीं, भी रावण जलाते, उसकी पत्नी मंदोदरी थी, उनको भी तो जलाना चाहिए, उसको तो नहीं जलाते हम। रावण के दो भाइयों को तो जलाते, भाई और बेटा कुंभकर्ण को कई जलाते हैं, मेघनाथ को भी जलाते हैं, लेकिन मंदोदरी को थोड़ी जलाते, वो तो बहुत अच्छी थी, कितनी शिक्षा देती थी रावण को, सुनता ही नहीं था। तो बाबा कहते हैं मंदोदरी का बुत बनाकर जलाए ऐसा कभी देखा नहीं। तो बाप बैठ समझाते हैं, ये है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अभी तुम झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो, झूठे मनुष्य से सच्चे देवता बनने बैठे हो। फर्क तो हुआ ना, वहां तो सदैव सच बोलेंगे, कल सत्युग में कोई झूठ नहीं बोलता है, सब सच बोलेंगे। वो है सच खंड, ये है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते हैं। झूठ खंड में और क्या होगा, सब झूठ ही बोलते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, ज्ञान सागर बाप जो रोज बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पर विचार सागर मंथन करना है। करते थे सभी विचार सागर मंथन, बाबा की मुरली सुनकर फिर विचार सागर मंथन करना है। जो पढ़ा है वो दूसरों को भी जरूर पढ़ाना है। दूसरा, ये बेहद का ड्रामा कैसे चल रहा है, ये अनादि बना बनाया वंडरफुल ड्रामा है, इस रास को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। सम्राट माना राजा। तो पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है, धर्म का दूसरा अर्थ भी है धारणा, जो धारण करने योग्य वही धर्म। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता, एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म न हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ व विकल्प का नाम निशान नहीं होगा। ऐसी संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट हैं। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है, अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। अभी सत्युगी संस्कार भर रहे हैं, तो यही अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। स्लोगन, विजयी रत्न वही बनते हैं। कौन बनते हैं विजयी रत्न? विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। विजयी रत्न वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। आज का अव्यक्त इशारा, 16 तारीख है आज। संतुष्टता के गुण को धारण कर, क्या करो, संतुष्टता के गुण को धारण कर हद के मेरे तेरे के चक्र से मुक्त हो जाओ। मेरे तेरे जो हद के चक्र है उससे मुक्त रहो, उससे मुक्त रहो। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्टता सदा निर्विकल्प एक रस के विजयी आसन की अधिकारी बनाती है। संतुष्ट मणियां सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सहज स्मृति के तिलक धारी, विश्व परिवर्तन की सेवा के ताजधारी बन, अपने संपन्न स्वरूप में स्थित रहती है। ये संतुष्टता ही ब्राह्मण जीवन का जीवदान है, जीवन का दान है ये संतुष्टता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे। और जैसे बाबा ने कहा, हाँ, जो सुनते हो वो फिर उसको उगाड़ना है, उसको मनन चिंतन करना है। ओम शांति।